আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মায়ি ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহ ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকুল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। আপকো মালুম হে কে রবিউল আউয়াল শরীফ কা মুবারক আর মুকদ্দাস মহিনা আপনি রহমতোঁ আর বরকতোঁ কে সাথ হাম পর সায়া ফিগন হোনে ওয়ালা হে। ইস মাহে মুবারক কা হর হর লমহা রহমত হে, বরকত হে, আর আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কা করম হে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাম সবকো ইস মাহে মুবারক কো আদব আর ইহতেরাম কে সাথ গুজারনে কি তৌফিক আতা ফরমায়ে। আজ হামারি ইস নশিস কা উনওয়ান হে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা আদব আর ইহতেরাম। আদব এক এসি চিজ হে জো ইনসান কো বুলন্দি আতা করতা, বকার আতা করতা আর খুশ নসিবি আতা করতা। হকীকত ইয়ি হে কে বা আদব বা নসিব আর বে আদব বে নসিব। জো জিতনা আদব করেগা উতনা হি ইজ্জত বকার মর্তবা হাসিল করেগা, আর জো বে আদব হোগা ও কবি ভি কামিয়াবি ফলা হাসিল নাহি কর সকতা। হম আহলে সুন্নত ওয়া জামাত ইস মাহে মুবারক মে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মাহফিল মুনাক্কিদ করতে হ্যায়, লঙ্গর শরীফ করতে হ্যায়, সরকার কি সনাখানি করতে হ্যায়, জিক্র মুবারক করতে হ্যায়। ইন তমাম চিজো মে আদব সবসে বড়ি চিজ, আর ইয়ে আদব বারগাহে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা আদব। আর ইয়ে আদব হামে সিখায়া খালিক কায়নাত নে, মেরে মহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বারগাহ মে কিস তরহ আও, কিস তরহ বৈঠো, কিস তরহ কলাম করো, কিস তরহ গুফতগু করো, সারি চিজে সিখাই কুরআন মে। সাহাবা কহতে হ্যায় কি হাম নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কি বারগাহ মে বৈঠতে থে তো ইস আন্দাজ সে বৈঠতে থে কি গোয়া হামারে সরো পর পরিন্দে বৈঠে, আগর হামনে গর্দন হিলাই তো পরিন্দে উড় যায়। ইস তরহ জামিদ আর সাকিত হোকর আদব কে সাথ বারগাহ রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে বৈঠতে থে। আব আপ দেখেন কুরআনে করিম কি মুতাআদ্দিদ আয়াত ইস বাত পর শাহিদ হ্যায় কি খালিকে কায়নাত চাহতা হ্যায় কি মেরে মহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা আদব কিয়া যায়। ওয়াক্ত মুখতসর হ্যায়, মে সির্ফ চন্দ আয়াত পর ইক্তিফা করুঙ্গা। সাহাবা ইকরাম রিজওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইন বারগাহ রিসালত মে হাজির হোতে কোই বাত সুননে সে রহ জাতি তো কহতে রায়না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রায়না কা মতলব হামারি রিয়ায়ত ফরমাই, ইয়ানি এ আল্লাহ কে হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হামারি রিয়ায়ত ফরমাতে হুয়ে ইস বাত কো দোহরা দিজিয়ে, তো সরকারে দু আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দোহরা দিজিয়ে। আকসর এসা হতো কি কই বাত শুননে সে রে যাতি হ্যাঁ, দু আদমি আপস মে গুফতগু কর রে হ্যাঁ, ইয়া এক আদমি সবসে গুফতগু কর রা, আর শুননে ওয়ালো সে কই বাত রহ গই তো উসনে কাহা দুবারা জরা দোহরা দিজিয়ে, ইয়ে বাত মেরে সমঝ মে নাহি আই। তো ইসি তরহ সাহাবায়ে কিরাম আদব সে আরজ করতে রায়না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এ আল্লাহ কে হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হামারি রিয়ায়ত ফরমাই, আর সরকার সমঝ যাতে উস বাত কো দোহরা দেতে। লেকিন কাফির জো ইস বাত কি তাক মে রহতে থে কি কোই চিজ এসি মিল যায় কি বারগাহে রিসালত মে মাযাল্লাহ গুস্তাখি হো যায়, উনহোনে ইয়ে লফজ দেখা আর ইস লফজ কো বিগাড় দিয়া, রায়না কে বজায় রাই না কর দিয়া, আর রাই কে মানা চরওয়াহে কে, আর আগর রাই না কহ দে তো কিতনে গলত মানা হো যায়, আর বারগাহে রিসালত মে গুস্তাখি কা পহলু নিকল আয়ে। সাহাবা কি নিয়ত পর শক নাহি কিয়া যা সকতা, ও সচ্চে আশিক রসুল থে, মোহব্বত রসুল উনকে কলুব মে রাসিক হো চুকি থি, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जो लफ्ज सहाबा इस्तेमाल करते थे उसी लफ्ज को काफिरों ने बिगाड़ कर इस्तेमाल किया। खालिक़े कायनात ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो, ईमान वालों से कह दें या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू रायना, अब आज से रायना मत कहना। मौला फिर क्या कहें, वक़ूलुन ज़ुरना, एक बेहतरीन लफ्ज कुरान ने दे दिया। अब तुम क्या कहो, उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के अभी हमारी तरफ नज़र फरमाइए। कितना प्यारा लफ्ज़ कुरान ने दिया, अगर कोई बात सुनने से रह जाए तो अब तुम पहला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उस लफ्ज़ को काफिरों ने बिगाड़ दिया और शान रिसालत में गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे रसूल की शान में अदना सी भी गुस्ताखी की जाए, लिहाजा अब वो लफ्ज़ मतरूक हो गया। ला तकूलू रायना वकूलुन ज़ुरना, अब अगर कोई बात सुनने से रह जाए तो तुम्हें क्या कहना है, उन ज़ुरना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अभी हमारी तरफ नज़र फरमाई। और मुफस्सिरीन ने लिखा उन्ज़ुर अनिल लुत्फ़े वल करम, उन्ज़ुर अनिल लुत्फ़े वल रहमा, अल्लाह के अबीब रहमत की नज़र फरमाइए, करम की नज़र फरमाइए। और कितनी हकीकत है, कितनी बड़ी हकीकत है कि जिस पर रसूल की नज़र करम हो जाए उसे फिर किसी नज़र की ज़रूरत नहीं, उसकी दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाए, आखिरत में भी बेड़ा पार। उन्ज़ुर ना, हमारी तरफ नज़र फरमाइए। कुरान ने इसी तरह कबीले बनु तमीम के लोग बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सरकार काशाने नबुवत में हैं, आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने बाहर से पुकारना शुरू कर दिया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात खालिक़े कायनात को नागवार गुजरी, क्यों इन्होंने पुकारा, बेअदबी है, गुस्ताखी है, फौरन आयत रब्बानी नाज़िल फरमाई। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्सरहुम ला याकिलून, ऐ महबूब जो लोग आपको हुजरे के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेअक़ल हैं। वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये सबर करते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, कि आप खुद इनमें तशरीफ ले आते, लकाना खैरल्लाहुम, तो इनके लिए बेहतर। कुरान ने क्या सबक दिया, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अगर वो अपने काशाने नबुवत में हो, दरवाज़ा बंद हो, बाहर से मत पुकारो, खामोश खड़े हो जाओ, जब वो खुद तशरीफ ले आए तो तुम्हारे लिए बेहतर। पुकारना गुस्ताखी है, बुलाना गुस्ताखी है, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ जब पुकारेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, आप किसी के घर पे जाएंगे बगैर बैल बजाए, बगैर दस्तक दिए खड़े हो जाएं, आप दो घंटे खड़े रहें, साहिब खाना को क्या पता कि बाहर कौन आया है। तो अगर हम खालिक कायनात की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला तेरे हबीब की बारगाह में जाएं, पुकारे नहीं, दस्तक ना दें, खड़े हो जाएं, उनको पता कैसे चलेगा, जवाब यही मिलेगा, बताया तो उसे जाता है जिसको पता ना हो, खबर उसे की जाती है जो बेखबर हो। अरे जो रसूल फर्श पे रहकर अर्श की खबरें दे रहा है वो नहीं जानता कि बाहर कौन आया, इसलिए बेहतर यही है, पुकारो मत, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी है, सरकार खुद तशरीफ ले आए, कुरान कहता है लकाना खैर अल्लाहुम, उनके लिए बेहतर। इसी तरह मुतअद्दिद आयात इस बात पर शाहिद हैं कि खालिक कायनात अदब सिखा रहा है बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये तो मैंने हल्की सी झलक आपके सामने पेश की, अब आइए मौजूदा दौर में, हम महफिल मिलाद करते हैं, आपने सुना होगा, सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे कि जब किसी को नात की दावत दी जाती है तो हम क्या कहते हैं, बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश करने के लिए ये साहब आ रहे हैं। बारगाह रिसालत में क्या मतलब, मतलब ये है कि ये जितनी महफिल सजी हुई हैं, जितनी भी महाफिल सजी हुई हैं, ये सब रसूल की बारगाह, ये उन्हीं की बारगाह में सजी हुई, दुनिया के किसी कोने में किसी खित्ते में महफिल होगी वो मेरे रसूल की बारगाह है, अगरचे वो अपने जिस्म मुबारक के साथ मदीने तैयबा में है लेकिन अपनी रूहानियत के साथ हर मोमिन के दिल में जलवागर। कुरान ने कहा नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से ज्यादा उनसे करीब, تو اب نبی کے قرب کو دیکھنا ہو تو دیکھو جان تم سے کتنی قریب، تمہاری جان تم سے کتنی قریب ہے، جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا نبی تم سے قریب، تو رسول کی بارگاہ ہے، تو اس لیے اس بارگاہ کا ادب لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اب اس میں کیا ہو، پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم محفل میلاد منعقد کریں اور اس میں شرکت کریں، باوضو ہو کر شریک ہوں، یاد رکھیے سب پر لازم ہے۔ آپ اپنے گھر میں محفل کریں، کسی جلسے میں جائیں جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو رہا، خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، ثنا خوانی ہو یا تقریر ہو، با ادب ہو کر، باوضو ہو کر، اور اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سننے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے وہ سارا وقفہ عبادت میں شمار ہوگا اور سرکار کی نگاہ کرم ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی محفل میلاد منعقد کرتے تھے، لنگر تقسیم ہوتا تھا، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر لنگر ہوتا ہے۔ یہی سنیوں کا طریقہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے اسلاف سے اور اب تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں لنگر تقسیم کرتا تھا سرکار کی ولادت کی خوشی میں، پہلے محفل منعقد ہوتی تھی اسی طریقے سے اور پھر لنگر۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حالات درست نہ رہے، مرور ایام کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے نا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اگر کوئی کاروباری آدمی ہے تو کبھی کاروبار اچھا ہے کبھی مندا ہے، اسی طرح کوئی جاب کرتا ہے کوئی اور کام کرتا ہے، تو زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالات درست نہ رہے تو میں لنگر شریف نہ پکا سکا، یعنی اتنے پیسے نہیں تھے کہ محفل ہو اور پھر میں لنگر بھی کھلاؤں بھی تقسیم بھی کروں، تو میں نے کیا کیا، بھنے ہوئے چنے لے کر سامنے رکھ کر اسی پر میلاد پڑھ دیا، وہی تقسیم کر دیا، بھنے ہوئے چنے۔ اب کیا ہوا، رات ہوئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف، زیارت ہوئی سرکار کی، فرمایا میں نے دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے اور آپ تناول فرما، بے خبر ہیں کیا، باخبر ہیں، جانتے ہیں کون کس محبت سے کس عقیدت سے میرا ذکر کر رہا ہے اور میرے نام پر لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ اس لیے جو جو بھی محفل میلاد کرتا ہے اس کو یقین کر کے کرنی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفیض بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اب اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں جس پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دور کریں۔ مثلا بریانی اگر پکتی ہے، بعض لوگ تو کھلاتے ہیں، بعض یہ کہ تھیلی میں تقسیم کرتے ہیں، تھیلیاں بنا لیں، اب اگر جلوس جا رہا ہے تو اچھال اچھال کر پھینکی جا رہی، ادھر سے پھینک رہے، ادھر سے یہ کیچ کر رہے ہیں، کسی کے پکڑنے سے رہ گئی، زمین پہ گر گئی، تھیلی پھٹ گئی، رزق بکھر گیا۔ رزق کی بے ادبی ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کا رزق پاکیزہ طیب اور وہ بھی سرکار کے نام پر، وہ اگر اس طرح گرے تو کتنی بے ادبی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے جہاں جہاں تک ہمارا دار اختیار ہے ہم اس چیز کو روکیں، یہ بے ادبی ہے، یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ آپ اگر تقسیم کریں آپ ہاتھ میں دے دیں، ہینڈ ٹو ہینڈ، ایک ایک کے ہاتھ میں دے دے ہو جائے، لیکن ایک گاڑی گزر رہی ہے اس کے اوپر سے آپ نے اچھال دیا، لوگ بھاگے، ایک دوسرے کے اوپر گرے، اسی میں بعض دفعہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ تھیلیاں گریں، پھر وہ چاول بکھر گئے، یہ سب بے ادبی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں۔ تو ہم جن کے نام پر کر رہے ہیں ہمیں چاہیے ادب ملحوظ رکھیں، ادب کے ساتھ پہلی چیز تو آپ بٹھا کر کھلا دیں، آرام سے لوگ آئیں کھائیں، کھا کر چلے جائیں، جو جتنا کھائیں، जो जा रहा है उसको भी दे दिया अगर ज़्यादा है, और अगर वैसे आप रोड पर तकसीम करना चाहते हैं तो कभी भी इस तरह थैलियों में डाल के उछाल कर ना करें, ये बेअदबी है, रिजक की बेहुरमती। आप जो गुजर रहा है एक एक के हाथ में आप दे दें, आराम से पहुंच जाएगा, आपको भी सवाब मिल जाएगा, खाने वाले को भी मज़ा आ जाएगा, सरकार भी खुश हो जाएगी। इसी तरह महफिल मिलाद में बाद लोग बैठते हैं, इधर खिताब हो रहा है, उधर आपस में बातें हो रही, गुफ्तगु हो रही, कोई साहब बहुत पीछे बैठे हैं तो वो सिगरेट पी रहे हैं, इसी तरह कोई पान खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आदाब के खिलाफ। जब आप महफिल में आएँ, बावजू होकर आएँ, साफ़ सुथरा लिबास पहन कर आएँ, अपने जहन को पाक और साफ करके आएँ, और जो कुछ बयान किया जाए उसे गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और ये सोच कर आएँ कि यहाँ गुजारे हुए लम्हात, यही लम्हात हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। और ये होता है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने महफिल मिलाद मुनक्किद की, मैंने देखा कि उस महफिल पर अनवार व बरकात की बारिश हो रही, उस महफिल पर अनवार व बरकात की बारिश हो रही। अब उसमें कौन कौन होगा? क्या सारे नेक होंगे? कोई गुनाहगार भी होगा, कोई सियाकार होगा, कोई खताकार होगा, कैसा भी होगा, लेकिन जब बारिश बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि पथरीली ज़मीन है या सरसब ज़मीन है, नम जमीन है या पहाड़ है, बारिश यकसा बरसती है। जिस तरह ये बारिश यकसा बरसती है, रहमत खुदाबंदी की बरसात भी इसी तरह बरसती है। नेक और बद सब यकसा मुस्तफीज होते हैं, इसीलिए कहते हैं इन महाफिल में शिरकत करो, कि अगर उसमें कोई एक नेक है, बख्शा हुआ है, जन्नती है, खुदा की रहमत से उम्मीद है, उसकी वजह से पूरी महफिल बखी जाए। और जब रहमतों की बरसात होगी तो गुनाह धुलेंगे या नहीं धुलेंगे, मगफिरत होगी या नहीं होगी? और ये तो हो ही नहीं सकता कि सरकार के जिक्र की महफिल हो और रहमत ना हो। अरे रहमतल्लिल आलमीन की महफिल है और रहमत ना हो, कैसे हो सकता? हर महफिल पर रहमत है, हर महफिल पर अनवार तजल्लियात की बारिश होती है, ये अलग है कि हमें नजर नहीं आता। ये तो रूहानी बरसात है ना, रहमतों बरकतों की बरसात होती है, ये हमारी जाहिरी आंखों से नजर नहीं आती, ये दिल की आंख चाहिए। जिसका दिल रोशन है वो इस बारिश को देख सकता है, वरना तो आप जाइए आपको नजर नहीं आएगी। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक सहाबी का इंतकाल हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उसके जनाजे में तशरीफ ले गए, जनाजा गुजर रहा था, अम्मुल मोमिनीन ने सरकार का तहबंद शरीफ ये सर पे डाल लिया और पर्दे की ओट में से झांक कर देख रहे, सर पे डाल लिया और पर्दा ज़रा सा खोल के झांक कर देख रहे। आपने देखा कि तेज बारिश हो रही और उस बारिश में जनाजा जा रहा। जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तदफीन के बाद काशान नबूवत में आए, अम्मुल मोमिनीन ने देखा जिसमें मुबारक को हाथ लगाया, अमामा शरीफ को हाथ लगाया, सरकार ने फरमाया आयशा क्या कर रही? सरकार देख रही हूँ बारिश तो इतनी तेज़ थी आपके कपड़े नहीं भीगे, बारिश इतनी तेज़ थी कपड़े नहीं भीगे। सरकार मुस्कुराए, फरमाया तुमने कैसे देख लिया? और जिस वक्त तुम देख रही थी, इन्होंने अर्ज़ किया मैंने पर्दे की ओर से झाँक कर देखा था जब जनाजा गुजर रहा, तुमने क्या चीज़ ओढ़ रखी थी? सरकार आपका ये तहबंद मुबारक सर पे रख लिया था, कहा इसी की बरकत से तुम्हें नजर आ गया। फरमाया आयशा वो बारिश नहीं थी जिससे कपड़े भीग जाएं और गीले हो जाएं, ये रहमत खुदाबंदी की बरसात थी, इसका जनाजा जो जा रहा था ये जन्नती था और इस पर रहमतों की बारिश हो रही। तो तुमने इसीलिए देख लिया कि मेरा वो तहबंद वो कपड़ा जो था तुम्हारे सर पे था उसकी बरकत, पता चला कि जिस चीज़ को आका इस्तेमाल कर लें उसमें भी बरकत, जहां कदम रख दें वहां भी बरकत, जहां तशरीफ़ ले जाएं वहां भी बरकत। मक्के में थे तो सारी बरकतें मक्के में, और वहां से मदीने तैयबा चले गए तो अब सारी बरकतें मदीने। अरे जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, जहां वो मुजस्सम आराम फरमा हो वहां कितनी बरकत। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आज सारी बरकतें मदीने में है, सारी रहमतें मदीने में है, सारी रिफातें मदीने में है, सारी बुलंदियां मदीने में है, सारी नेमतें मदीने में, इसलिए कि जिसकी वजह से नेमतें हैं वह खुद मदीने। तो जहां जहां रहमतों की बरसात हो रही है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके में हो रही। तो इन महाफिल मिलाद का मकसद क्या है? लोग कहते क्यों करते हो, रबीउल अव्वल शुरू हुआ तुमने महफिलें शुरू कर दी, 12 रोजा जलसे हो रहे हैं, 10 रोजा जलसे हो रहे हैं, कोई अपने घर में महफिल कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है? एतराज करते ना लोग, क्यों कर रहे हैं? हमने कहा तुम्हें अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी, ये तो अल्लाह की तौफीक है, जिससे चाहे अपने महबूब का जिक्र करा ले। अरे उनके लिए कोई कमी है? हम अगर जिक्र ना करें तो उनके लिए कमी है? उनके जिक्र करने वाले हजारों लाखों करोड़ों बेशुमार मौजूद है, ये तो हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमारी खुश नसीबी कि उसने हमें मुंतखिब कर लिया कि जाओ मेरे महबूब का जिक्र करो। और जो जिक्र करेगा इंशाल्लाह नेक बख्त रहेगा, बानसीब रहेगा और सरकार की शफात नसीब होगी। तो ये तो सुन्नियों की खुशनसीबी है, दूसरों को तौफीक ही नहीं दी। तुम अपना ही जिक्र करते रहो, हम रसूल का जिक्र करते रहो। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया था, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जितना रोकोगे उतना ही बढ़ेगा, जितना रोकोगे उतना ही बढ़ेगा। क्यों? खालिक़े कायनात चाहता है मेरे हबीब का जिक्र हो, वो चाहता है मेरे रसूल का जिक्र हो। और अगर हम किसी अजाब से बचे हुए हैं तो इसीलिए कि सरकार के जिक्र की महफिलें घर घर हो रही। और आप सबको ये चाहिए जितनी महाफिल हो उनमें तो शिरकत करें ही करें, अपने अपने घरों में भी छोटी सी महफिल का इनेकाद ज़रूर करें। अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठ जाइए, सरकार का कोई वाक़या सुना दीजिए, तिलावत कर लीजिए, एक नात पढ़ लीजिए, मिठाई तकसीम कर दें, महफिल मिलाद हो। और ये महफिल मिलाद करना तो खालिक कायनात की सुन्नत है। सबसे पहली महफिल मिलाद आलम अरवा में हुई, तमाम नबियों की रूहों को जमा किया। कुरान कहता है वैज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ अन्नबियीन, ऐ महबूब याद कीजिए जब आपके रब ने नबियों से मीसाक लिया, उनसे अहद लिया, और क्या कहा, लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, ऐ पैगंबरों जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर अगर तुम्हारे पास रसूल आ जाए, यानी मेरा महबूब अगर तुम्हारे दौर में आ जाए तो क्या होगा, लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, तुम अहद करो कि जरूर जरूर इन पर ईमान लाओगे और उनके दीन की मदद करो। तो पहली महफिल मिलाद तो हो चुकी, अब बाद में हो रही आलम अरबा में हो चुकी, खालिक कायनात की सुन्नत। तो इसलिए इसमें हमें चाहिए कि हम अपने घरों को भी सजाएं और महफिल मिलाद मुनक्किद करें, अपने बच्चों को बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक सुनाएं। चाहे एक ही वाकया छोटा सा आप सुना दें, बच्चे के जहन में बैठ जाएगा, मरते दम तक नहीं निकलेगा। सरकार की शमाइल, उनके खसाइल, उनके फजाइल, उनकी आदात, उनके अतवार, उनका तरीक़ा, एक एक चीज़ बताइए, समझाइए, अमल वो करेगा, सवाब आपको मिले। तो इस चीज़ को हमें पेश नज़र रखना चाहिए, अपने घरों को भी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर जहाँ जहाँ महाफिल हो रही हैं, जितना आपसे हो सके, जितनी जिसकी हैसियत है उसको चाहिए कि उसमें हिस्सा लें। आप एक पैसा खर्च करेंगे, अल्लाह के हबीब किसी का रखते नहीं हैं, वो उसका दुगना लौटा दें, उनकी शान ही यही है। कोई एक नात मोहब्बत से पढ़ ले, फौरन बुलावा आ जाता, तुमने हमारी तारीफ की, आ जाओ बारगाह रिसालत में हाजिरी दे दो। ये तो सरकार की शान, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तुम वहां जाना किसी उस पर मौकूफ नहीं है, बुलावे पर मौकूफ। करोड़पति रह गए और गरीब चले, जिस पर निगाहे करम हो। तो बात यहां से चली कि महफिल मीलाद का अदब सब पर लाजिम है। جب محافل میلاد میں شرکت کریں، باوضو ہو کر جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، کوئی اور گفتگو نہ کریں، جو کچھ بیان کیا جائے اسے سنیں، اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور سرکار کے یہ واقعات اپنے اہل خانہ کو سنائیں، ان کو بتائیں، بچوں کو بٹھا کر بتائیں، سمجھائیں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں کامیابی. جو جتنا ادب کرے گا وہ اتنا ہی مرتبہ حاصل کرے گا. صحابہ نے ادب کر کے بتا دیا، اور اخالق کائنات نے ادب سکھایا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ادب اسی وقت کا نہیں تھا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو. آج بھی یہ آیت موجود ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والوں، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے. اب جا کر دیکھیں مواجہ شریف میں کتنا مجمع ہوتا ہے، لیکن ایک آواز کسی کی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ شہنشاہ کون و مکان موجود، اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ادب لازم ہے، ادب لازم ہے. تو جہاں جتنا ادب ہوگا اتنی ہی برکتیں ہوں، اتنی ہی رحمتیں ہوں. تو اس لیے یہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ درود پاک کی کثرت کریں، اور اگر درود تاج پڑھ لیا جائے تو وہ تو پھر نور العلا نور، سرکار کی پوری شان اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اور درود تاج اسی لیے اس کا نام درود تاج رکھا کہ سارے درودوں کا تاج ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. جب خشوع اور خضوع کے ساتھ رجوع اللہ رجوع الرسول ہو کر پڑھو گے، انشاءاللہ تعالی سرکار کی نگاہ کرم ضرور ہوگی. تو اس ماہ مبارک میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جو بھی درود، صرف یہی نہیں کہ درود تاج جو لکھا ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ لمبا ہے، ہو سکتا ہے بہت سو کو یاد نہ ہو، چاہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. سرکار کی آمد کا مہینہ، حضور کی شان بیان کرنے کا مہینہ، سرکار کی عظمت، رفعت، بلندی، ان کا مقام، مرتبہ بیان کرنے کا مہینہ ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم درود ہی پڑھتے رہیے، رحمت کی نظر ہو جائے گی، ایک نگاہ کرم ہو گئی مدینے والے کی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.